इतने भव्य स्वागत के बाद तारापरी की आंखें चमक उठी थी। उसे सब कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा लग रहा था। वेल, अभी वो थोड़ी आगे गए थे कि तभी तारापरी ने देखा उसके ठीक सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा झूला तैयार किया गया था, जो शायद बिल्कुल सफ़ेद फूलों से बना हुआ था। तारापरी उसे देखकर चहक उठी थी और वो अमन का हाथ छोड़कर जल्दी से उस झूले की ओर बढ़ने लगी थी। अमन उसे रोकता ही रह गया, लेकिन तारापरी उस वक्त कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो झूला वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसे देखकर तारापरी अपने अरमानों पर काबू नहीं रख पाई और वो दौड़कर उसे झूले के पास चली गई थी। और जैसे ही तारापरी ने उस झूले को छुआ, तो उसकी एक भयानक चीख निकल गई थी, क्योंकि जहां पहले उसे बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद फूलों से बना हुआ झूला दिखाई दे रहा था, अब उस सफ़ेद फूलों की जगह काले काले भयानक मोटे मोटे सांपों ने ले ली थी और तारापरी एकदम से उन सांपों को देखकर चीख पड़ी थी। और तभी अमन दौड़कर उसके करीब आया। तारा ने अमन को देखते ही उसे जोर से गले लगा लिया था और उसका पूरा जिस्म कांपने लगा था। तब अमन ने उसे शांत करने की कोशिश की और बोला, मैं आपको इसीलिए रोक रहा था कि अगर आप अकेले झूले को छू लेंगे तो आप इसकी असलियत देखकर चौंक जाएंगी, क्योंकि ये आम दुनिया का झूला नहीं है, ये जिन्नातों का बनाया हुआ झूला है, जिसे आप केवल अपने शौहर यानी कि मेरे साथ ही छू सकती हैं और उस पर बैठ सकती हैं। अगर आपने अकेले इस झूले को छुआ तो ये आपको कीड़े मकौड़े, सांप, बिच्छू से ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तारापरी अब बहुत अच्छी तरह से अमन की बात को समझ चुकी थी और उसे ये भी याद आ गया था कि करिश्मा जी ने उसके अंदर ये नियम भी डाला था कि बिना अमन के वो वहाँ किसी भी चीज़ को नहीं छू सकती है। तारापरी को अब खुद पर ही गुस्सा आने लगा था कि क्यों उसने अमन के बिना उसे झूले को छू लिया, और वो झूला अब एक झूला ना रहकर भयानक सांप जैसा बन चुका था, जिसमें अनगिनत काले काले सांप फन फैलाए बैठे हुए थे, जो उस झूले पर बुरी तरह से लिपटे हुए थे। तब अमन ने तारापरी का हाथ पकड़ा और उन काले सांपों की ओर दोनों ने एक साथ हाथ रखा। तो जैसे ही अमन और तारापरी ने उसे झूले पर लिपटे हुए सांपों पर हाथ रखा, देखते ही देखते वो झूला वापस खूबसूरत सफ़ेद फूलों में बदल गया था। तब अमन ने कहा, आप इस झूले पर केवल मेरे साथ ही बैठ सकती हैं। अगर आपने अकेले झूले पर बैठने की हिम्मत की तो वापस से आपको वो काले काले सांप दिखाई देंगे, और जहाँ तक मुझे लगता है उन्हें देखकर आप खुद को संभाल नहीं पाएंगी और हो सकता है कि आप बेहोश हो जाएं। अमन की बात सुनकर तारापरी ने अमन का हाथ कसकर पकड़ लिया और वो उस झूले पर अमन से बिल्कुल चिपक कर बैठ गई थी। हालांकि तारा को अब उस झूले पर बैठने में भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो सांप बार बार उसकी आंखों के सामने आए जा रहे थे। तभी अमन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, सो तुम शांति से आराम से यहाँ पर बैठो। और अभी वो लोग बैठे ही थे कि तभी तारापरी ने देखा कि सामने से दो औरतें बड़ी बड़ी थाल लिए उनके करीब आ रही हैं। उन औरतों का कद बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तारापरी ये देखकर पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि वो औरतें ऐसा लग रहा था जैसे आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हों। इतने बड़े बड़े कद वाली औरतों को देखकर तारापरी की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था, और उन्हें देखकर तारापरी को अब डर भी लगने लगा था। अमन भांप चुका था कि तारा उन लंबे कद वाली औरतों को देखकर डर रही है। तब अमन ने एक बार फिर से अपनी तालियां बजाई और देखते ही देखते उन औरतों का कद छोटा हो गया था। तारापरी ये देखकर चौंक गई। जो औरतें बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े कद वाली थी, अब वो वापस से एक नॉर्मल कद में आ गई थी और वो तारापरी के पास ही चली आ रही थी। हालांकि वो औरतें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन तारापरी के आगे वो खुद को काफी ज्यादा कम समझ रही थी। सभी जिन्नातों को ये लगा था कि अमन, जो कि उनका होने वाला महाराज है, वो किसी न किसी जिन्नाती औरत से ही शादी करेगा, लेकिन अमन ने एक मामूली इंसानी लड़की से शादी करके सबको चौंका दिया था। एक यही कारण था कि कुछ जिन्नातों के मन में अमन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेल भर चुका था, क्योंकि वो जिन्नात ये आस लगाए बैठे थे कि उन्हीं के कुल की उन्हीं की बेटी अमन की बीवी बनेगी और दुनिया के सबसे शक्तिशाली बच्चे को जन्म देगी और जिन्नातों की महारानी बनेगी। लेकिन अमन ने एक मामूली इंसान से शादी करके उसे जिन्नातों की महारानी घोषित कर दिया था, तो ये बात कुछ जिन्नातों को हजम नहीं हो रही थी, तो इसीलिए वो आज तारापरी के साथ कुछ ऐसा करने वाले थी ताकि अमन को यह एहसास हो कि दुनियावी लड़की से शादी करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। धीरे धीरे वो औरतें चलकर तारापरी और अमन के पास आ गई थी। उनके हाथों में एक सफ़ेद रंग की मोतियों की माला थी, जिसे तारापरी पहले भी देख चुकी थी, लेकिन वो ये बात अमन को नहीं बता सकती थी। तारापरी को अच्छे से याद था जब वो छुपकर अमन के पुश्तैनी गांव वाले महल में गई थी। वहां पर उसे एक जादुई बोना मिला था, जिसने उसे वो सफ़ेद रंग की मोतियों की माला दी थी, जिसे पहनकर तारापरी गायब हो सकती थी। तारापरी ने उस माला को देखते हुए अनजान बनते हुए कहा, ये क्या है? तब उनमें से एक औरत बोली, होने वाली महारानी जी, ये जिन्नातों की दुनिया की निशानी है, आज से ये आपके साथ रहेगी। जब भी आपको कोई फैसला लेना होगा, आपको ये माला पहनकर लेना होगा। तारापरी सोचने लगी, फैसला कैसा फैसला, भला मैं कैसा फैसला लूंगी। तब उनमें से दूसरी औरत बोली, जिन्नातों के कुछ फैसले होते हैं जो केवल महाराज और महारानी ही लेते हैं। सोचूं कि अब आप भावी महारानी जी हैं तो जिन्नातों के फैसले आप ही लेंगी। इस माला को पहनने के बाद आपको जिन्नातों के सारे रहस्य पता चल जाएंगे। क्योंकि आप एक मामूली इंसान हैं, इसीलिए हमें आपको ये माला देनी पड़ रही है। अगर आप एक जिन्नात होती तो आपको इस माला की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ के जिन्नातों को सभी रहस्य अच्छी तरह से मालूम है। उस औरत ने अमन के सामने जानबूझकर तारापरी को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, जो बात अमन ने अच्छी तरह से महसूस कर ली थी, लेकिन तारा को उस औरत के बोलने का कोई असर नहीं हुआ था। वेल, अमान अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने उस औरत के हाथ से माला लेते हुए कहा, आप लोगों को तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये महारानी है, महाराज अमन की बीवी, तो इसको किसी भी तरह का कुछ भी सिखाने या करने की कोई जरूरत नहीं है। सब फैसले करने के लिए अमन ही काफी है। और अगर सचमुच मेरी बीवी को कुछ भी सीखने की जरूरत है तो मैं हूं ना, मैं अपने आप सिखा लूंगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। ऐसा कहकर अमन ने वो माला वापस उन औरतों को लौटा दी थी। तभी तारापरी ने देखा उनमें से एक औरत का मुंह अमन के जवाब से लटक गया था। तब तारापरी उठी और औरत के हाथ से वो माला लेते हुए बोली, अगर आप मेरे लिए इतने प्यार से इस माला को लेकर आई हैं तो मैं इसे जरूर लूंगी। मैं इसे अपनी मुंह दिखाई का तोहफा समझकर अपने पास रखूंगी। ऐसा कहकर तारापरी ने वो माला अपने पास रख ली थी, जिसे देखकर उस औरत का चेहरा एक बार फिर खिल उठा था। तारापरी की इस हरकत से अमन मन ही मन मुस्कुराने लगा था। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसकी बीवी कितनी नेक दिल है, वो किसी को इस तरह से मायूस नहीं देख सकती है।
वो औरतें जैसे ही वापस जाने लगी, तारापरी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए। वो औरतें पीछे पलटी और बोली, जी महारानी जी। तब तारापरी, क्या आप मुझे इस पूर जिन्नातों की पूरी दुनिया की सैर करवाएंगे? तारापरी के इस सवाल पर औरतें एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगी थीं, क्योंकि तारापरी का सवाल उन्हें बहुत ही ज्यादा अटपटा सा लगा था। क्योंकि ये बिल्कुल साफ था, तारापरी अगर अमन के साथ इस दुनिया की सैर करेगी तो ही उसे सब चीज़ें अच्छी, साफ सुथरी और खूबसूरत दिखाई देगी। लेकिन अगर तारा अकेले इस दुनिया का सफ़र करेगी तो उसे इस दुनिया की रियलिटी, सच्चाई दिखाई देगी। जिस तरह से इस वक्त वो फूलों के झूलों की जगह एक सांप से बने हुए झूले पर बैठी हुई थी। तारापरी की इस बचकानी हरकत से अमन का पारा हाई हो गया था। उसे पता था तारापरी एक मामूली इंसान है, वो इस तरह से जिन्नातों की दुनिया की सच्चाई नहीं देख सकती है। लेकिन अगर वो अमन के साथ रही तो उसे पूरी दुनिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। लेकिन अगर वो अकेले इस दुनिया को देखने निकलेगी तो सब कुछ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और भयानक हो जाएगा। तब अमन ने तारापरी का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम मेरे बिना इस दुनिया को देखना चाहती हो? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? तब तारापरी अमन से, हाँ, मैं आपकी इस दुनिया को अकेले देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ अगर मैं आपके साथ इस दुनिया को देखेगी तो मुझे सब कुछ झूठ फरेब ही दिखाई देगा, जो आप मुझे अपनी आंखों से दिखाया है, ताकि मुझे डर ना लगे। लेकिन अमन सर, मैं अब आपकी बीवी हूँ, मैं आपको कबूल किया है, तो मैं आपको आपकी दुनिया के सच के साथ कबूल करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हम लोगों के बीच में इस बात को लेकर मतभेद हो कि आपकी दुनिया खूबसूरत है या डरावनी। मैं नहीं चाहती आपको ये लगे कि आपकी इस दुनिया को देखकर मैं आपको जज करूंगी या आपसे कुछ सवाल करूंगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इस दुनिया को अपनी आंखों से देखूं, जो भी सच है वो अपनी आंखों से देखूं, आपकी आंखों से कुछ भी झूठ फरेब ना देखूं। तारापरी की बात सुनकर अमन कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया था, लेकिन वो ये भी जानता था तारा जोश जोश में तारा ने जो फैसला ले रही है वो उसे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। क्योंकि अमन ये भी अच्छी तरह से जानता था कि कुछ लोग यहाँ ऐसे मौजूद हैं जो तारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और अब अगर तारा अकेले इस दुनिया के सफ़र पर देखने के सफ़र पर निकलेगी तो पक्का वो लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और जिन्नाती दुनिया को अपनी नग्न आँखों से देखना तारापरी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और भयानक काम हो सकता था। लेकिन अमन अब तारा को मना भी नहीं कर सकता था।